شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وعترته الطاهرة واللعنة الدائمة إلى أهلها. اذان محترم، مسلسل ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کی، روزانہ کی جو مختصر دعائیں ہیں ان کی مختصر تشریح کے باب میں اور عنوان سے جاری و ساری ہے. آج 11ویں دن کی جو دعا ہے، اس دعا کے الفاظ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حبب الی فیہ الاحسان. پروردگارہ، مجھے احسان اور نیکی کرنے کی طلب اور محبت اور شوق عطا فرما. وکرہ الیہ فیہ الفسوق والعصیان، اور فسوق اور عصیان کو میرے نزدیک برا بنا دے. احسان کو میرا پسندیدہ عمل بنا دے، فسوق و عصیان کو میرا ناپسندیدہ عمل بنا دے. مجھے کراہت ہو، نیکی کرنے کا میرا دل چاہے اور فسوق و عصیان سے دور رہنے کا میرا دل چاہے. وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، اور اے پروردگار، مجھ پر حرام کر دے اپنی ناراضگی کو اور اپنی جہنم کی آگ کو، مجھ پر حرام کر دے. بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اپنی مدد کے ذریعے سے میری ان تین دعاؤں کو قبول کر لے. پہلی دعا، احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے، فسوق و عصیان کو میرے لیے ناپسندیدہ عمل قرار دے، اور اپنی سخط و نیران کو، یعنی جہنم کی آگ، نیران سخط اپنا غضب، ان دونوں چیزوں کو مجھ پر حرام کر دے. اس دعا کی تلاوت کا ثواب آج کے دن میں یوں ملتا ہے کہ من دعا بھی کتب لہ حجۃ مقبولۃ مع النبی. جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے حج مقبول کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے انجام دیا، اس کا ثواب عنایت فرماتا ہے. اس کے لیے حج مقبول، رسول کے ساتھ کیا ہوا ایک حج مقبول لکھ دیتا ہے اس کے لیے. وَعُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور ایک ایسا عمرہ لکھتا ہے کہ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام پایا ہو. وَكُلُّ حَجَّةٍ مَعَهُ، اور ہر وہ حج کہ جو رسول کے ساتھ انجام دیا ہو، تَعْدِلُ، برابر ہوگا، سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ یا حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ. یہ ایک حج جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیا ہے، اس کا ثواب اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ 70,000 عام حجوں کے برابر ہوگا. یعنی 70,000 عام حج کیے اور ایک حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، ویسا ایک حج مقبول پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا. وہ کل عمرتن، اور ہر عمرہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انجام پائے وہ ہوتا ہے 70,000 عام عمروں کے برابر. 70,000 عام عمرے کے برابر ایک عمرہ جو اہل بیت کے ساتھ کیا، 70,000 عام حج کے برابر جو ایک حج نبی کے ساتھ کیا. تو ایسا ایک حج اور ایک عمرہ، ایک حج نبی کے ساتھ، ایک عمرہ رسول کی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کا یہ ثواب لکھا جائے گا اگر کوئی شخص آج کے اس دن کی دعا کو طلب کرتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں، ہم نے آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا تھا کہ ہر دن کی دعا کا ثواب ایسا ہے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یار، آج کے دن کی جو دعا ہے نا، ایٹ لیسٹ مجھے یہ اسکپ نہیں کرنی چاہیے، یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. کتنا ثواب ہے! ایسا ہی ہے ہر دن کا ثواب، الگ الگ ثواب، اور ایسا ثواب کہ انسان اس کو پشت ہی نہ دکھا سکے، اس کو اسکپ نہ کر سکے، اس کو مس نہ کرے. ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے کی مجھ میں احسان کرنے کا شوق پیدا کر دے، احسان کا عمل میرے لیے پسندیدہ عمل قرار دے. تو احسان، ان اللہ یحب المحسنین، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ پروردگار احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. इन अहसंतुम, अहसंतुम ले अनफुसिकुम, याद रखो अगर तुमने कोई नेकी की है, एहसान किया है और अच्छा काम अंजाम दिया है तो अहसंतुम ले अनफुसिकुम, किसी पर तुमने किसी पर तुमने एहसान नहीं किया, ये एहसान वो वाला एहसान नहीं है, ये एहसान जो हमारे यहाँ राइज है वो वाला है। तो इन अहसंतुम, अहसंतुम ले अनफुसिकुम, अगर तुमने कोई नेकी की तो याद रखना वो तुमने अपने लिए की। अच्छा, ये सूरह इसरा की आयत है। जो इंसान नेकी करता है वो अपने लिए करता है। एक वाकया है इसके एतबार से बनी इसराइल, अच्छा ये वाकया मौला सरकार इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि आलाफुत तहियत व सना मौला नकल फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 2 साल मुसलसल, कौम बनी इसराइल में 2 साल मुसलसल कहत पड़ा और पे दर पे 2 साल कंजेकटिव 2 ईयर्स तक कहत था। एक दिन एक औरत ने रोटी का एक लुकमा, अब वो रोटी जो उसके पास बच गई होगी वो उसने खाने के लिए उसका एक लुकमा बनाया और वो लुकमा बना के अपने मुंह के करीब, अपने दहन के करीब लेकर आई, करीब था कि वो उसे अपनी ज़ुबान पर रख लेती। दरवाजे पे दस्तक हुई और दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, या अमत अल्लाह अलजू, ए अल्लाह की कनीज मैं भूखा हूँ। अब कहत का दौर हो, खाना दाना पानी मिल ना रहा हो और ऐसे दौर में अगर किसी के पास एक रोटी का एक टुकड़ा, एक लुकमा आ जाए तो ये बहुत बड़ी उसके लिए चीज़ होती है। और वो एक लुकमा, जिस एक लुकमे में उसने पूरे दिन में गुजारा करना है, वो खाते हुए अगर कोई दरवाजे पे दस्तक दे दे तो क्या आलम होगा, रुकेगा नहीं, फौरन खा लेगा, एक सेकंड मजीद इंतज़ार नहीं करेगा, वो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर आ जाए और मुझसे ले जाए छीन के, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उस खातून ने ये सोचा कि मैं खा लूँ और वो भूखा रहे, जो दरवाजे के पीछे साहिल खड़ा हुआ है फ़कीर भूखा शख्स, वो भूखा रहे मैं खा लूँ, ये कैसी बात होगी, लिहाजा अपने मुँह से लुकमा छोड़ कर ले जाके वो लुकमा उस भूखे शख्स को दे दिया कि जिसने कहा था या अमत अल्लाह, ए अल्लाह की कनीज अलजू। ये वाकया हो गया। फिर कोई एक मौका आया, कोई एक दिन ऐसा आया कि ये लकड़ियां काटने के लिए अपने छोटे बच्चे को लेकर जंगलात की तरफ गई, अपने छोटे बच्चे को एक कोने पर बिठा दिया और लकड़ियां काटने लगी और लकड़ियां काट के लकड़ियां जमा करती जा रही है, बच्चा बैठा हुआ है एक कोने में। इतने में किसी एक मकाम से एक भेड़िया नमूदार हुआ, आया, उसने बच्चे को दबोचा और उठा के चलता बना। ये खातून देखकर चीखने लगी, शोर करने लगी, घबरा गई और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। परवरदिगार आलम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और कहा कि ए जिब्रील जाओ और इस भेड़िए के मुंह से ये बच्चा लेकर इस खातून को वापस पलटा दो। ये चली, बच्चा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उस भेड़िए के मुंह से निकाला और उस माँ की गोद में ला के रख दिया। और जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ये जुमला कह रहे थे, लुकमे के बदले लुकमा, वहाँ तुमने एक लुकमा अपने मुंह से निकाल कर उसके हवाले कर दिया था, यहाँ तुम्हारा बच्चा अभी भेड़िए का लुकमा बन गया था, तुमने एक साइल के लिए अपना लुकमा छोड़ा, हमने तुम्हारे लिए उस भेड़िए का लुकमा जो कि तुम्हारा बच्चा था वो तुम्हें पलटा दिया, लुकमे के बदले लुकमा, क्या तुम राज़ी हो? कैसा वाकया है ये? और ये वाकया नेकी के आसार में से एक असर है कि वो खातून, ये वाकया अवाली लियाली नाम है किताब का, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 354 पर लिखा हुआ, वसाइलु शिया के जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 380 पर ये वाकया मौजूद है, जो रेफ़र करना चाहे उनके लिए रेफरेंस के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। नेकी की, अपना लुकमा छोड़ा, परवरदिगार आलम ने उस भेड़िए का लुकमा छुड़वा के बच्चा उस तक वापस पहुँचाया। क्या निज़ाम है परवरदिगार का? कोई तवक्कुल करने वाला हो तो हो, अल्लाह पे यकीन रखने वाला हो और उस पर यकीन रख के नेकी करे कि ये मेरी की हुई नेकी मुझ तक वापस पहुँचेगी, वापस पटेगी लाजमन। इब्ने अब्बास हैं, अब आप देखिए नेकी के लिए इंसान किस हद तक जाए, किस हद तक जा सकता है, इमाम मासूम अलैहि सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। ये एक वाकया और सुन लीजिए और इस पर हमारी फिर आज की गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो अलैहि रहमत व रिजवान ये कहते हैं कि मैं मस्जिदुल हराम में मौजूद था, इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलातो व सलाम की खिदमत में हाजिर था, यानी उनकी मईत में मैं मस्जिदुल हराम गया था। इमाम मस्जिद के अंदर एतिकाफ में बैठे हुए थे, मोतकिफ थे, मौला मस्जिद में एतिकाफ किया हुआ था मौला ने, तवाफ के अंदर मशगूल थे, और तवाफ के दौरान एक शख्स आया, इमाम के चाहने वालों में से था, मोमिनीन में से था, और मौला के मवालियों में से था, यानी कि मौला से मवद्दत और मोहब्बत रखने वालों में से था। आका की खिदमत में आया और आने के बाद ये कहने लगा कि मौला, ऐ फरजंदे रसूल, मुझ पर बहुत सारा कर्ज है और उसकी मकदार इतनी इतनी है, कुछ अगर हो सके तो मेरी मदद फरमा दीजिए। मौला ने फरमाया कि इस काबे के रब की कसम, यानी काबा काबतुल्लाह की तरफ इशारा करके इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस काबे के रब की कसम, मैंने इस हाल में सुबह की है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि वो कि जिनके दस्ते मुबारक में ज़मीन व आसमान कायनात का इख्तियार परवरदिगार आलम ने दे रखा है, वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं है दस्ती कि जो उस शख्स को दे के उसकी हाजत रवाई कर सकें, और हर वक्त मौजज़ा दिखाने का वक्त नहीं होता है, यानी मौजज़ा दिखाने की सलाहियत रखते हुए भी मौजज़ा कब दिखाना है ये इमाम मासूम को बेहतर मालूम है। तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ। तो फिर उसने पलट कर कहा कि ठीक है, तो फिर एक काम करें कि मेरे साथ चले और वो शख्स जो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है और ये कह रहा है मैं तुम्हें कैद कर लूँगा, उससे मुझे कुछ मोहलत दिलवा दीजिए, कोई टाइम दिलवा दीजिए, वक्त दिलवा दीजिए कि मैं थोड़ा सा वक्त लेके उसकी जो अमाउंट है उसको वापस पलटा दूँगा, उसका कर्ज उसको वापस पलटा दूँगा। तो मुझे डराता है। इब्ने अब्बास ने कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ को छोड़ा, नेकी किस हद तक, इंसान नेकी के लिए किस हद तक जाए, इमाम अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ को छोड़ा और इब्ने अब्बास ताज्जुब में आकर इमाम अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि ए मौला, आप मोतकिफ नहीं हैं, आप मोतकिफ थे, आप तो मस्जिद के अंदर एतकाफ में थे, आप मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते थे, आपने इस मोमिन की हाजत रवाई के लिए मस्जिद से बाहर निकलने का फैसला किया, आपने तवाफ को छोड़ा, क्या वजह है मौला? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बाबा से सुना, यानी कि मौला अली मुर्तजा से, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो किसी मोमिन की हाजत रवाई करता है परवरदिगार उसके नामे आमाल में 90,000 साल की इबादत, ऐसी इबादत के दिन रोजे से हो और रात क़याम की हालत में हो, ऐसे 90,000 साल की इबादत उसके नामे आमाल में लिख देगा। तो मैं छोड़कर जो जा रहा हूं वो एक एतकाफ है, जो छोड़कर जा रहा हूं वो एक तवाफ है, और जो मिल रहा है वो 90,000 तवाफ, 90,000 साल की इबादत के दिन में रोजे और रात में क़याम कर रहा हूं। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम, अब वो जो एक वाकया था कि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ, अब ये मोमिन की भी एहतराम का इसमें उनवान बनेगा कि चूंकि मोमिन था इसलिए इमाम मासूम अलैहिस्सलाम उसके लिए एतकाफ और उसके लिए तवाफ़ काबा छोड़कर तशरीफ़ ले गए। कोई गैर मोमिन होता तो इमाम तशरीफ़ ना ले जाते, ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा होता कि जो अल्लाह के गज़ब का मरकज़ होता तो उसकी तरफ उसको सलाम का जवाब देना भी इमाम गवारा ना करते, लेकिन ये मोमिन था। छठे इमाम अलैहिस्सलाम तवाफ़ में है, एक मोमिन आया और इसने देखा कि छठे इमाम तवाफ़ कर रहे हैं, मैं क्या ही बात होगी कि इमाम के साथ तवाफ़ के अंदर शामिल हो जाऊँ कि यह कहा जाए कि मैंने इमाम की सोहबत में तवाफ़ किया, इमाम की मईत में इमाम के साथ तवाफ़ किया, उस तवाफ़ में कि जिस तवाफ़ में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मशगूल थे उसी तवाफ़ में मैं भी शामिल था। तवाफ़ करते करते एक मोमिन ने दूर से इस मोमिन को बुलाया, वो उसे इग्नोर कर रहा है, छठे इमाम देख रहे हैं, यहाँ तक के दूसरे तीसरे चक्कर के बाद इमाम ने फरमाया कि क्या वो तुझसे मुखातिब है? कहा हाँ, मुझे बुला रहा है। कहा वो मोमिन है? कहा हाँ मोमिन है। इमाम ने कहा अभी इसी वक्त तवाफ़ छोड़ कर जा और उसकी हाजत रवाई कर और फिर वापस आ। कहने लगा कि मौला ये तवाफ़ ये छूट जाएगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बता कि तवाफ़ करना होता है ये तुझे किसने सिखाया? हम अहले बैत ने सिखाया, और हम ही तुझे बतला रहे हैं कि जाकर मोमिन की हाजत रवाई कर। कितना इम्पोर्टेंट है मोमिन की हाजत रवाई करना, इससे अंदाज़ा करना चाहिए। लिहाजा परवरदिगार इसमें एहसान और नेकी करने को मेरे लिए पसंदीदा अमल बना। फुसूक और इसयान, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, फुसूक और इसयान। एक है फुसूक यानी कि इताअत को तर्क करना, अल्लाह की बात को न मानना, और इसयान यानी क्या है कि बुरे काम को अंजाम देना, यानी जो वाजिबात हैं उनको छोड़ना, इसको फुसूक कहा जाता है, और जो इसयान है हराम काम को अंजाम देना, इसे उसयान कहा जाता है। फुसूक उस बुरे काम को भी कहा जाता है कि जो खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जाए। फासिक व फाजिर वो शख्स है कि जो खुल्लम खुल्ला गुनाहों को अंजाम दे, फासिक। लिहाजा फुसूक और इसयान, तो जो छुपा कर गुनाह किया जाए वो इसयान, और जो खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जाए वो फुसूक। लिहाजा परवरदिगार मुझे छुपे हुए गुनाहों से भी बचा और अलल ऐलान गुनाहों से भी मुझे नफ़रत करने की तौफीक इनायत फरमा। मुझे बुरे लगें, जब भी गुनाह का जिक्र आए तो मैं कराहत करूँ, मुझे वो जैसे कराहत हो, मैं उनकी तरफ, गुनाहों की तरफ लपकूँ नहीं, गुनाह मेरे पसंदीदा अमल ना हो। अब मैं क्या क्या मिसालें दूँ कि जो बुरे अमल हैं और वो हमारे बहुत सारे जवानों के फेवरेट अमल हैं, फेवरेट काम है, फलां जगह जाना, फलां काम करना, फलां से मिलना, यूँ करना, ये करना। परवरदिगार बुरे अमल को मेरे लिए कराहत का सबब बना कि बुरे अमाल को सुनकर मुझे कराहत आए, ताकि मैं खुद उनसे तो हर्रम अलैया फी है असखत बंदीदान। और परवरदिगार अपनी गुस्से और अपने गज़ब को मुझ पर हराम कर दे और आतशी जहन्नम को मुझ पर हराम कर ले। परवरदिगार आलम के सख़त और उसके गज़ब का सबब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते, पाँच चीज़ें जो अल्लाह के गज़ब को खींच के लेकर आती हैं, पांच आमाल इंसान के। नंबर एक, वालिदैन को अजियत पहुंचाना, ये अल्लाह को गज़बनाक करता है। कतए रहम करना यानी कि जो इंसान के ब्लड रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशन के अंदर जो उसके रिश्तेदार आते हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को कता कर लेना, छोड़ देना, बुरा सलूक करना उनके साथ, ये अल्लाह को नाराज़ करता है। ताखीर करना नमाज में, अपने वक्त से उसको मुअख्खर करके, लेट करके पढ़ना, ये परवरदिगार आलम के गज़ब का सबब बनता है। अल्लाह के हुकूक का अदा यानी हुकूक इलाहिया का अदा ना करना। और नंबर पाँच, किसी उम्मीद रखने वाले को रद्द कर देना। कोई तुमसे उम्मीद रखता है कि मैं इसके पास जाऊँगा ये तो मेरा काम ज़रूर कर देगा, और उसकी उम्मीद को रद्द कर देना, उसको खाली पलटा देना, ये भी अल्लाह को गज़बनाक करता है। इंसान अगर जो पूरी पूरी उसकी उम्मीद है, जितना वो चाहता है उतना इंसान अगर नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा ज़रूर उसकी मदद करे, जो भी हो। सिर्फ माल के लिए नहीं कहा जा सकता, बहुत सारी हेल्प्स होती हैं। इंसान किसी अपने जुमलों से किसी की मदद कर सकता है, अपने कलम से किसी की मदद कर सकता है, खुद जाकर अपनी प्रेजेंस की वजह से किसी की मदद कर सकता है। तो इंसान जितना जिसके लिए कर सकता हो एहसान और नेकी को ज़रूर अंजाम दे, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमारी इताअतों, इबादतों को, मुनाजात और रियाजात और ज़ियारात को कबूल फरमाएँ। बहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें आका के अस्हाब में शुमार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।